वह चर्चा आपके समक्ष अंत अंत में रखी थी कि भरत जी श्री राम से मिलित होते हैं चित्रकूट में, वह अद्भुत मिलन है जहां पर मन बुद्धि चित्त और अहंकार सभी प्रेम में जाकर के एकाकार हो गए और तब वह केवट जिसको नीच शूद्र और अछूत कहा जाता है उन दोनों को समाधि से ऊपर उठाता है और तब हम देखते हैं कि किस प्रकार गुरु वशिष्ठ इतने मुग्ध हो जाते हैं भरत के चरित्र से कि वे भी राम सखा मान करके केवट गुह को अपने हृदय से लगा लेते हैं। यह भाव क्रांति है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री भरत के चरित्र के माध्यम से उत्पन्न की है और इस भाव क्रांति की आज हमें सर्वाधिक आवश्यकता है जब हम धर्म के नाम पर मनुष्य मनुष्य में विभाजन करते हैं तो वह तो धर्म की विडंबना ही है, वह कोई धर्म तो नहीं है। तो यह जो मनुष्य का विभाजन कोई ऊंचा और कोई छोटा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत चरित्र के माध्यम से इस भेद को पूरी तरह से पाट देने की चेष्टा की, यह विलक्षण भाव क्रांति है जैसा कि कल हमने देखा। अब उसके बाद आप जैसा पढ़ते हैं कि प्रभु में श्री भरत जी के साथ वार्तालाप होता है, अन्य लोग भी उस वार्तालाप में योग देते हैं परंतु भरत में और श्री प्रभु में वार्तालाप प्रमुख रूप से होता है। तरह तरह से प्रभु समझाते हैं पर भरत का मन तो मानता नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अंत में भरत जी ने यही कहा कि यदि आप मुझे वापस लौट जाने के लिए कहते हैं तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, पर कृपा करके मुझे जीवन धारण करने के लिए आधार तो दीजिए। 14 वर्ष का समय बहुत दीर्घ काल होता है और विरह में कैसे बचा रहेगा भरत, यह प्रश्न तो भरत के सामने ही उपस्थित होता है और इसीलिए वे प्रभु से आधार की याचना करते हैं। बंधु प्रबोध कीन्ह बहु भांति, बिनु आधार मन तो सन शांति। का प्रभु, बिना आधार के तो मेरे मन में संतोष नहीं होगा और न शांति ही मुझे मिलेगी। यदि आप भरत को चाहते हैं जीवित देखना लौटने के बाद तो कृपा करके कोई आधार दे दीजिए। और तब हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने क्या आधार दिया। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, साधन भरत शीस धरिनी। प्रभु ने अपनी पादुका श्री भरत जी को समर्पित की और पादुका लेकर के भरत जी उसे सिर पर धारण कर लेते हैं। प्रभु हंसे, भरत यह कैसी बात है, यह तो तुमने चाहा था आधार और मैंने तो तुम्हें भार दे दिया। यदि तुमने पैर में इसे पहना होता तो आधार होता, तुमने सिर पर धारण कर लिया है तो वह तो भार बन गया, पर भरत भी तो कम नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, मैंने आधार मांगा तो यह जो आपने प्रदान किया है वह आधार भी है और समझ लीजिए कि वह पद भी है, दोनों है, पद के लिए है। आप यही तो कहते हैं ना कि आपने पादुका पद के लिए दी है और मैंने उसे आधार के रूप में ग्रहण किया तो आपने कह दिया कि वह भार है। मैं इसे भार नहीं मानता, मैं यह मानता हूं कि यह आधार ही है और आपकी बात को भी स्वीकार करता हूं कि यह पादुका पद के लिए है। पर जानते हैं, यह दे करके आपने पदा दिया कि यह पादुका अयोध्या के राज पद के लिए है और उसी रूप में मैं इसे ग्रहण कर रहा हूं। तो महाराज, यह पादुका मुझे आपके पद का ही स्मरण कराती रहेगी और यह प्रबोध कराती रहेगी कि अयोध्या का राजपद प्रभु का है, किसी और दूसरे का नहीं है। और आपने कहा आधार नहीं भाग, मैं तो कहता हूं भाग नहीं आधार। भरत का तात्पर्य यह है, उन्होंने सिर पर पादुका रख ली और पादुका रख ली इतने बड़े अयोध्या के राज का भार उठाने के लिए। आप देखते हैं जब स्टेशन जाते हैं तो कुली भार उठाता है कपड़े से, हम लोग उधर कहते हैं गुड़री बनाता है, आप लोग और कोई शब्द कहते होंगे। वह कपड़ा लाल लाल बना करके सिर पर रखता है और रख करके बहुत भार उठा लेता है। तो वह जो कपड़े की गुड़री बनी है वह तो इतने बड़े भार के लिए आधार भी तो बनी है। तो भरत जी कहते हैं कि यह पादुका भार नहीं महाराज, यह तो आधार, अयोध्या के राज को उठाने का आधार। इस दृष्टि से भी विलक्षण मानो विश्लेषण करते हैं भरत जी महाराज, और उनका तात्पर्य क्या है। जैसा कि विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिखते हैं, बिनु आखिन की पा नहीं पहचानत लखि पाय। यह परत्राण की विशेषता है, आंखें नहीं है परत्राण, परंतु जब आप पैर अंधेरे में डालने लगते हैं तो वह परत्राण बता देता है कि हम आपके हैं या नहीं, तुरंत पता चल जाता है। जो सज्जन है वे तो झट निकाल लेते हैं, और जो दूसरे प्रकार के लोग हैं कहते हैं नहीं हम तो तुमको अपना बनाएंगे ही, तो वे भिन्न प्रकार के हैं, भले पहन करके चले जाए पर पादुका बता देती है कि मैं तुम्हारी हूं या नहीं। भले ही उसकी आंखें नहीं हैं पर जब हम पैर डालते हैं तो बता देती है। तो भरत का यह कथन है कि महाराज यह जो पादुका आपने प्रदान की है इससे मुझे सतत आपके चरण कमलों की स्मृति आती रहेगी, यही भाव बना रहेगा कि अयोध्या का राजपद आपका है, और ठीक उसी भाव का वे निर्वहन करते हैं। हम पढ़ते हैं सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरुपाद, जाते हैं वे नंदीग्राम में और वहां पर जाकर के पादुका को अभिषिक्त करते हैं और बिठा देते हैं और क्या करते हैं, नित पूजत प्रभु पावरी, जहां पर वे कहते हैं नित पूजत प्रभु पावरी प्रभु पद प्रीति अपार, मागु मागु आय सुकरत राज काज बहु भांति, नित पूजत प्रभु पावरी प्रेमन हृदय समाति, मागु मागु आय सुकरत राज काज बहु भांति। पूछते हैं पावरी से, मानो यह जो पावरी है भरत जी के लिए जड़ नहीं, वह मानो चैतन्य स्वरूप है, हर समय प्रभु का स्मरण दिलाती रहती है। और जिस समय भरत जी पादुका को लेकर के लौटेंगे तो प्रभु ने कहा, देखो भरत आज से अब मेरे दो रूप हो गए, इस रूप में मैं वन में रहूंगा और पादुका के रूप में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। भरत जी पूछते कि महाराज यदि क्रम को बदल दें तो कैसा हो, पादुका के रूप में आप वन में रहें और इस रूप में आप मेरे साथ अयोध्या लौट चले। प्रभु ने कहा होता कि भरत मुझे तो इसी रूप में वन में रहने दो, इसी रूप में देख करके यदि देवता और अन्य लोग मुझे पहचान सके तो बड़ी बात, पादुका के रूप में तो वे पहचान ही नहीं पाएंगे। जड़ पादुका के रूप में तुम्हारे साथ चलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि तुम ठीक ठीक इस पादुका के अर्थ को समझते हो। अरे चेतन में ही चेतन को पहचानने वाले बहुत कम है, फिर जड़ में चेतन को कौन पहचानेगा, वह तो एकमात्र तुम ही हो भरत। और इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, हो तन भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को। यदि भैया भरत न हुए होते तो अचर को सचर कौन बनाता? पादुका तो अचर और भरत ने उसे सचर बना दिया। साक्षात श्री राम का चिन्मय विग्रह वे उस पादुका में देखते हैं और वे सचर को अचर भी बना देते हैं। श्री राम जैसे को एकदम उन्होंने अचर बना दिया, मुनियों को अचर बना दिया, भाव विभल बना करके उनको समाधि में डुबा दिया, तो जो चेतन है उनको वे अचेतन कर देते हैं अपने प्रेम के द्वारा, अपनी भक्ति के प्रकाशन से, और जो जड़ है पादुका के समान उसको चैतन्य दे देते हैं। यह विलक्षण क्षमता तो भैया भरत में ही है। और ऐसे ये भरत जब लौट आए अयोध्या गुरु वशिष्ठ के साथ, माता जी माता लोगों के साथ और उसी प्रकार सभी पुरवासियों के साथ, तो उन्होंने मन में विचार किया, यह विचार किया कि यहां पर अयोध्या में रहना मेरे लिए उचित नहीं। जब प्रभु वन में निवास कर रहे हैं तो मेरे लिए नगर में रहना अच्छा नहीं, इसलिए उन्होंने नंदीग्राम को चुना। आप में से बहुतों ने नंदीग्राम के दर्शन किए हैं, अयोध्या से दूर। उस समय तो वहां पर घोर वनस्थली रही होगी, आज भी देख करके ऐसा लगता है कि वह एक वनस्थली रही होगी। तो भरत जी ने गुरु वशिष्ठ से जाकर के चरणों में प्रणाम करके पूछा, गुरुदेव यदि आप मेरा प्रस्ताव अनुचित न माने और यदि इसे धर्म संगत समझे तो मैं चाहता हूं कि अयोध्या नगर में न रह करके नंदीग्राम में वहां पर प्रभु की पादुकाओं की प्रतिष्ठा कर दूं और वहां रह करके मैं राज्य कार्य का संचालन करूं, आपका क्या मत है? और तब एक विलक्षण बात गुरु वशिष्ठ कहते हैं। विलक्षण इसलिए कि गुरु वशिष्ठ धर्म के प्रखर ज्ञाता है और वे कोई भी बात शिथिल रूप से कहेंगे नहीं। तब जब भरत ने यह पूछा तो गुरु जी कहते हैं कि भरत तुम मुझसे धर्म की व्याख्या पूछते हो या कहते हो कि तुम जो करना चाहते हो नंदीग्राम में जाकर के राज्य का संचालन वह धर्मानुकूल होगा या नहीं? तो सुनो भरत, मैंने धर्म की एक नई व्याख्या तैयार की और वह नई व्याख्या क्या है? समुझब कहब करब तुम जोई धर्म साल जग होई सोई। तुम जो भी समझोगे, तुम जो भी कहोगे और जो भी करोगे वही धर्म का सार होगा। इतनी बड़ी उपाधि भरत को और किसी ने नहीं दी। गुरु वशिष्ठ जैसा कि मैंने कहा धर्म के प्रकांड ज्ञाता, और यह जो वे कहते हैं कि भरत तुम जो समझोगे, जो कहोगे और जो करोगे वही धर्म का सार होगा, इसके पीछे गुरु वशिष्ठ का अद्भुत चिंतन समाया हुआ है। धर्म सार का क्या मतलब है? धर्म का सार सब रिलीजन क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यह है फल का सार क्या है? फल का सार उसका रस है। जैसे फल, फल में तीन चीजें होती हैं, एक तो ऊपर का छिलका, अंदर की गुठली, बीज का रस। अब ये तीन बातें फल में हुआ करती हैं और तीनों बातें ही आवश्यक। छिलका ना हो तो फल की सुरक्षा ना हो, रस ठीक ठीक सुरक्षित न रह सके, इसके लिए छिलके की भी आवश्यकता है। गुठली ना हो तो वृक्ष की वंश परंपरा ही नष्ट हो जाए, तो उस वंश परंपरा को चालू रखने के लिए गुठली भी प्रयोजनीय है और तल तो उसका रस तो सार भाग है। तो यह जो कहते हैं यहां पर गुरु वशिष्ठ भरत से, तुम धर्म सार हो, इसका तात्पर्य क्या है? अब देखिए, तीन प्रकार के लोग हो सकते हैं। एक तो वे हो सकते हैं कि जो रस का तो पान करें
और गुठली और छिलके को छोड़ दें। दूसरे वे हो सकते हैं कि जो यह माने कि भाई गुठली और छिलका ये दोनों भी तो प्रयोजनीय हैं, इसलिए रस के साथ साथ गुठली और छिलके को भी ग्रहण कर ले। यह दूसरी स्थिति है। और तीसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि रस को तो हम फेंक दें और गुठली और छिलके को ग्रहण कर ले। आप कहेंगे ऐसा कौन कर सकता है?
फल के संदर्भ में कोई करे तो उसको तो हम पागल कहेंगे, पर धर्म के संबंध में कोई करे, और हम में से बहुत से लोग धर्म के संबंध में ऐसा ही करते हैं, रस को तो फेंक देते हैं, छिलके और गुठली को ग्रहण कर लेते हैं। तो गुरु जी का कथन यह है कि जो केवल रस का ग्रहण करता है वह धर्मसार है, जो रस के साथ साथ छिलके और गुठली को भी लेता है वह धर्म का ज्ञाता है, और जो रस को फेंक करके छिलके और गुठली को लेता है वह धर्माभाग है। एक धर्मसार, दूसरा धर्म और तीसरा धर्माभास, ये तीन प्रकार है। तो गुरु जी धर्म के ज्ञाता है, और उन्होंने अपने मुख से स्वीकार कि अभी तक तो मैं केवल धर्म को जानता था, पर जब से भरत के साहचर्य में आया, निकट साहचर्य में जब से मैंने भरत को नजदीक से देखा है, तब से मुझे प्रतीति हो रही है कि धर्म कार क्या है। तो गुरु वशिष्ठ धर्म के ज्ञाता और भरत के नैकट्य में आकर के वे धर्मसार के ज्ञाता बनते हैं, और इसीलिए उन्होंने भरत की प्रशंसा में यह कहा कि तुम जो कुछ समझोगे, जो कुछ कहोगे और जो कुछ करोगे वह धर्मसार होगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि वह व्यर्थ की प्रशंसा नहीं, यह गूढ़ चिंतन का परिणाम था। उन्होंने देखा कि भरत के माध्यम से यह धर्म कैसे धर्मसार का रूप लिया हुआ रखा है। उन्होंने यह भी देखा कि मेरे जीवन में तो धर्म के रूप में ही विद्यमान, पर भरत के जीवन में यह धर्मसार, और इसका तात्पर्य क्या है? धर्मसार का विलक्षण तात्पर्य जो है वह भरत जी के जीवन से ध्वनित होने वाला। जैसे महाराज श्री दशरथ ने ऐसा सोचा था कि अयोध्या का राजपद मैं दे देता हूं राम को, सिंहासन पर राम को बिठा देता हूं, उससे उन्होंने सोचा था राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। तो राम राज्य और यह जो धर्म का राज्य है दोनों में अंतर है। अयोध्या में धर्म का राज्य, गुरु वशिष्ठ ने चिंतन किया कि, और उसी प्रकार महाराज दशरथ ने भी सोचा था कि श्री राम को सिंहासन पर बिठा देने से राम राज्य हो जाएगा, पर श्री राम यह नहीं मानते और श्री भरत भी यह नहीं मानते कि मात्र सिंहासन पर श्री राम के बैठ जाने से राम राज्य हो गया। ठीक है, अयोध्या में धर्म का राज्य था, बहुत ठीक है, पर धर्म के राज्य को राम राज्य तक ले जाने के लिए जो प्रक्रिया चली, उस प्रक्रिया के प्रमुख नायक श्री भरत थे। राम राज्य में और धर्म राज्य में क्या अंतर होता है? धर्म राज्य में बड़ी सुंदर व्यवस्था होती है, बहुत से न्यायाधीश होते हैं और बड़े अच्छे होते हैं, कुशल न्यायाधीश होते हैं, और उसी प्रकार जब न्यायाधीश होते हैं तो वहां पर न्यायालय भी बहुत होते हैं, और उसी प्रकार जब न्यायालय बहुत होते हैं, न्यायाधीश बहुत होते हैं, तो झगड़े भी बहुत होते हैं, तभी तो न्यायालय होंगे यदि झगड़े भी ना हो। तो न्यायालय खोलने की क्या आवश्यकता है? जैसे एक ने हमसे कहा, भाई वहां पर बहुत अच्छा प्रबंध है स्वामी जी, काहे का प्रबंध है? हम लोग प्रवचन सुनने जाते हैं ना, तो वहां पर जूते रखने का बहुत बढ़िया प्रबंध है, इसका मतलब है कि चोर भी बहुत बढ़िया है, तभी तो जूते रखने का बहुत बढ़िया प्रबंध है। यदि चोर कहते ना हो चोरी करने वाले, प्रबंध की आवश्यकता ही नहीं है। तो राम राज्य वह है जहां पर इस प्रकार के झगड़े नहीं, जहां पर इस प्रकार की सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां पर चोर नहीं, वहां पर झगड़े नहीं, यह रामराज्य की धारणा है। तो यह जो धर्म का धर्म और धर्माभास, ये तीन आपके समक्ष रखे, और जो अधर्म है वह तो इससे बिल्कुल भिन्न है। तो लंका में अधर्म का राज्य, अयोध्या में धर्म का राज्य, और यह जो धर्म का राज्य है उसको श्री राम चाहते हैं कि धर्मसार का राज्य हो जाए या उनकी प्रक्रिया है। पर राजा दशरथ क्या सोचते हैं, सिंहासन पर बिठा दें, जो सूर्यकुल की परंपरा आ रही है, ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी दे दें और बस इस परंपरा के निर्वाह से राम राज्य आएगा नहीं आएगा, यह मान्यता श्री राम की नहीं है। और इसीलिए यहां पर देखते हैं तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि जब तक लंका में अधर्म का राज्य है और अयोध्या में अशांति है, वहां पर शांति नहीं, अयोध्या में जब तक अशांति है वहां पर भी दुर्गुण है, तब तक यह राम राज्य नहीं आ सकता। और इसीलिए दोनों ने आपस में बंटवारा कर लिया। भगवान श्री राम ने कहा जो बाहर के दुर्गुण और दुर्विचार है तो उनको निपटने के लिए तो मैं भी भर लक्ष्मण को लेकर के, और जो भीतर में जो आंतरिक संघर्ष करना है दुर्गुण और दुर्विचारों के विरुद्ध, बस तुम्हें शत्रुघ्न के साथ रह करके करना है। बांट लिया दोनों ने। श्री राम का कार्य अपेक्षाकृत सहज है, बाहर के दुर्गुणों के साथ युद्ध करना बहुत सहज है, क्योंकि वे दिखाई देते हैं, राक्षस दिखाई देते हैं, जो दुराचारी व्यक्ति है दिखाई देते हैं, बाली दिखाई देता है, रावण दिखाई देता है, कुंभकर्ण दिखाई देता है, निशाचर दिखाई देते हैं। पर यहां तो भरत को युद्ध करना है उन निशाचरों से जो दिखाई नहीं देते, जो मन में पैसे में, यह दुष्कर कार्य श्री भरत का है और दुष्कर कार्य श्री भरत स्वीकार करते हैं। और यह तो हम देखते हैं, पहले ये जो कैकेयी थी उनके भीतर में धर्म की प्रवृत्ति, पर मंथरा के संपर्क में आ करके उनमें धर्माभास आ जाता है, मंथरा लोभ वृत्ति, और ये जो कैकेयी है क्रिया वृत्ति, या आप सुना करते हैं तो ठीक है, लोभ और क्रिया ये दोनों साथ ही साथ चला करते हैं, यह तो ठीक है, क्रिया के साथ लोभ बना रहता है। पर वहां तक तो ठीक है जब कैकेयी स्वामिनी है और मंथरा दासी है, या क्रिया शक्ति आगे है और लोभ शक्ति पीछे है, तब तक तो ठीक है। पर क्रम अगर उलझ जाए, लोभ आगे आ जाए और उसके पीछे क्रिया चलने लगे, तब वह समूह नाश का कारण बनता है। और ठीक यही होता है, मंथरा आगे चली गई और उसके पीछे कैकेयी चलने लगी, तो वहां पर सब कुछ उलझ गया। फिर अयोध्या में जो धर्म राज्य था वह धर्माभास हो गया, और इसीलिए तो कैकेयी चाहती, क्या चाहती कैकेयी, कि ठीक है मेरे पुत्र को राज्य मिले, पर राम को देश निकाला मिले, वन मिले, अब यह तो अन्याय और अधर्म की बात। श्री राम कह सकते थे कि तुम अपने पुत्र को राज्य देना चाहती हो वहां तक तो ठीक है, पर मैंने क्या अपराध किया जो तुम मुझे वन देना चाहती हो। तो श्री राम कह सकते थे कि माता तुम तो यह अन्याय की बात कर रही हो, और श्री राम यदि धर्म कर्म थी कवया अप्यत्र मोहिता, कि कर्म क्या है अकर्म क्या है, बड़े बड़े ज्ञानी जन भी इस संबंध में विमूढ़ हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि कर्तव्य क्या है। तो श्री राम क्या सोचते हैं कि ठीक है, मैं यदि कैकेयी जिसको धर्म मानती हैं उसके विरुद्ध में मैं भी कहूं कि मैं भी धर्म मान करके युद्ध कर रहा हूं, तब तो यह लोभ का लोभ से युद्ध होगा, लोभ ही है। कैकेयी धर्म की बात कहती है लोभ की आड़ में, और मैं भी धर्म की बात कहूंगा लोभ की आड़ में। इसीलिए श्री राम यह ठीक करते हैं, निश्चित करते हैं कि कैकेयी का यह जो अधर्म दिखाई देता है उसके विरुद्ध यदि भरत का धर्म सार युद्ध करे तब तो ठीक, मेरा युद्ध करना ठीक नहीं, और इसीलिए पिता का वचन मान करके वे चल पड़ते हैं, यह हम देखते हैं। और भरत ठीक युद्ध करते हैं, वे ही कैकेयी के अधर्म के विरुद्ध युद्ध करते हैं। जैसे पहले तो किसी ने कहा कि भरत जी तो बहुत कोमल है, वे कैसे युद्ध कर पाएंगे, कोमल तो है पर उतने ही कठोर भी है। जैसे हम पढ़ते हैं वज्रादि कठोरा सुकोमल कुसुमारति, दोनों ही गुण उनमें फूट फूट करके भरे हैं, एकदम पुष्प से भी कोमल और वज्र से भी कठोर दिखता है लक्ष्मण जी, ऐसा लगता है बड़े कठोर, पर लक्ष्मण जी से भी कठोरता में ये बाजी मार ले जाते हैं। जब कहते हैं भरत किसी बात को कठोर ढंग से तब तो वे बाजी मार ले जाते हैं, ऐसे तो वे बहुत नम्र हैं, बहुत कोमल हैं, जब भी कोई बात कहते हैं तो बड़ी कोमलता से करते हैं। भरत कमल कर जोरी धीर धुरंधर धीर धरी
बचन अमिया जनु बोरी देत उचित उत्तर तबही।
ऐसे वचन कहते हैं मानो अमृत रस में डुबो कर, इतने कोमल, इतनी निरहंकारिता, इतने नम्र, ये भरत का गुण। और जिस समय कठोर होते हैं तो लक्ष्मण जी ने तो कह दिया, गुरु पितु मातु न जानो काम, मैं गुरु जी पिता माता किसी को नहीं जानता, एकमात्र श्री राम को जानता हूं। और उन्होंने कह दिया, और उन्होंने यह बात श्री राम से कही जब गुरु जी नहीं थे। और भरत जी कहते हैं, भरत जी तो गुरु के सामने ही गुरु की बात को काट देते हैं, मानते ही नहीं। जिस समय गुरु वशिष्ठ ने कहा कि तुम राज्य लो तो क्या कहते हैं, भरत को काट ही देते हैं।
गुरु विवेक सागर जग जाना, इन्हीं देश कर बदर समाना, मोकौ तिलक ताज सज तो विमुख विमुख तब को।
सब जानते हैं, सारा संसार जानता है कि गुरु जी विवेक के सागर हैं, और विवेक के सागर हैं, और यह विश्व उनके हाथ में जैसे हाथ में बदरी फल हो, देर हो, उसी प्रकार वे विश्व को अपने हाथ में रख करके सारा रहस्य भी जानते हैं। और ऐसे ज्ञानी गुरु जी भी जब मुझे राज सिंहासन पर बैठने के लिए कहते हैं, तब तो मैं यही कहूंगा कि जब एक बार विधि वाम हो जाती है तो सभी वाम हो जाते हैं। इससे बढ़कर के बात क्या हो सकती है कि विधाता वाम हो गए और इसीलिए सभी मेरे वाम हो गए। इसका मतलब यही तो था कि गुरु जी भी वाम हो गए। ऐसी बात कहते हैं कि तुम राज सिंहासन पर बैठो, गुरु जी इतने बड़े ज्ञानी हैं फिर भी ऐसा कहते हैं, उचित और अनुचित का विचार कहां चला गया है। जिन गुरु जी के संबंध में कहा जाता है कि विवेक के सागर, ऐसी कठिन बात तो भरत ही कर सकते हैं। फिर कहा था लक्ष्मण ने, मैं माता को नहीं जानता, तो यहां पर जो भरत हैं वे क्या कहते हैं, जिस समय डांटते हैं अपनी मां को क्या कहते हैं, बरम मांगत मन भय नहीं कीरा, गरी न जीह मुंह परे न कीरा। इतना कठिन शब्दों का प्रयोग यह तो लक्ष्मण जी भी नहीं कर सके। और पिता के लिए कहा लक्ष्मण जी ने, मैं पिता को नहीं मानता। और यहां पर भरत जी पिता के बड़े अनुरक्त हैं, परंतु वे भी कह उठते हैं, मरण काल विधि मति हरि ली, मृत्यु के समय विधाता ने उनकी मति हर ली थी। तो यह जो बात है यह विलक्षणता हमें भरत के जीवन में दिखाई देती है, बहुत ही विलक्षण। सब कहते हैं, वे तो कहते हैं कि पिताजी ने, जहां पर वे कह रहे हैं कि पिताजी ने ठीक है सत्य को रखने के लिए अपने प्राण त्याग दिए या मुझे त्याग दिया, ठीक है, यह जो भगवान श्री राम की दृष्टि बाधित थी, पर भरत की जो दृष्टि बाधित थी, क्यों वे ऐसा कहते हैं, उनका कहना यह है कि जिस समय माता ने वरदान मांगा तो पिताजी को कह देना था, देखो मैं तो इससे पूर्व सुबह मैंने घोषणा कर दी है राज दरबार में, पुरजनों के सामने, पतियों के सामने, गुरु वशिष्ठ के सामने, कि मैंने राज्य राम को दे दिया है, अब इसके बाद तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। पिता को ऐसा ही कहना था, पर पिता ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि ठीक है माता ने वरदान मांगे तो कह देना था कि भाई यह वरदान तो मैं दे चुका हूं, पहले दे चुका, तुमसे पहले दे चुका, तो जो पहले उन्होंने घोषणा की है तो वह क्या सत्य नहीं रहा, और जो सबके सामने घोषणा की, गुरु वशिष्ठ के सामने, सचिवों के सामने, पूर्ववासियों के सामने, तो वह घोषणा घोषणा नहीं रही, और एकांत में माता को जो वे बात कहते हैं, वचन देते हैं, वह वचन हो गया।